ओम शांति। बाबा ने आज कौन सा संगम में कौन सा युग है? छठी कला का युग। तो इसलिए बाबा ने सबसे पहले मीठे बच्चे या संगम युग है, छठी कला का युग है। आप चढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सबका भला हो जाएगा। हम चढ़ने थे, दूसरों की भला कैसा हो जाएगा? हाँ जी, क्योंकि हम ब्राह्मण आत्माएं। हम कौन है? हम ब्राह्मण आत्माएं। और किसको जाना है? परमात्मा को जान लिया है तो इसलिए कहां पर बैठे हो? हाँ, संगम युग में कहां पर बैठे हो? आपका भला होने से सर्व का भला कैसा हो जाएगा? हाँ, जड़ में बैठे हो, इस कल्प वृक्ष के जड़ों में बैठे हो। तो जड़ों में बैठने के कारण पानी कहां डाला जाता है? हाँ, जब आप बीज में और जड़ में पानी डालेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? हर पत्ते को पहुंच जाएगा वो। तो इसीलिए बाबा कहता है कि आपका उद्धार हो जाएगा तो सर्व का हो जाएगा। तो बाबा ने आज प्रश्न पूछा, क्या था? ब्राह्मण बच्चों को बहुत बधाई देते। क्या बधाई देते बाबा? किस चीज का बधाई दे रहे थे आज बाबा? यस, पहला बधाई क्या है? मनुष्य से देवता बनते जा रहे हो आप। हाँ, मनुष्य से देवता बनते जा रहे हैं जी, बनते जा रहे हैं जी। हाँ, अभी तुम रावण की जंजीरों से छूटते जा रहे हो और बाबा ने क्या, स्वर्ग की राजाई प्राप्त हो रहा है आपको। सच में राजाई प्राप्त हो रहा है ना? तो बाबा ने कहा राजाई प्राप्ति का पुरुषार्थ यहीं पर ही करना होगा। और बाबा ने क्या कहा, किस लिए बधाई? यस, पास विथ ऑनर बनते जा रहे हो। कौन से क्लास में जाना है आपको? हाँ, फर्स्ट क्लास में जाना है। तो इसलिए बाबा ने कहा बहुत बहुत बधाइयां हैं। और बाबा ने ये कहा कि तुम्हारा डोर किसके पास है अभी? सच में है? हाँ, सच में है? या कभी वहां या याद आता है? याद तो आएगा, लेकिन उस याद को बीच बीच में क्या करने का? कट करते रहने का, कट करके उसको कोशिश करते रहने का, प्रयत्न करते रहने का कि बाबा के साथ हमारा जुड़ा रहे डोर। देखो, बाबा के साथ कब जुड़ा रहेगा हमारा डोर? हाँ जी, जब आप, क्योंकि बाबा ने आज कहा ना कि मुझे याद करो, मैं आया हूं, मैं पढ़ा रहा हूं आपको, मैं ये कर रहा हूं। बाबा ने इतना कहा, बाबा ने आज मुझे याद करो, मुझे याद करो, देहाभिमान को निकालो, आत्माभिमानी बनो। जितना जितना बाबा से हमारा स्नेह रहेगा, जितना जितना बाबा से हमारा सर्व संबंध जोड़ेंगे, तभी डोर लग। गीत क्या थी आज? कौन सा दिन आया? हाँ, कौन सा दिन आया भाई साहब? कौन सा दिन आया आखिर वो? हाँ, 63 जन्मों से हम इंतजार कर रहे थे ना भगवान को प्राप्ति के लिए, इस मुरली को सुनने के लिए, हाँ, इस ब्रह्मा भोजन के लिए, मधुबन में आने के लिए, इस भट्टी के लिए। किस दिन की? तो बाबा ने कहा, तो बाबा आके कौन सा कथा सुना रहा है? एक तो अमर कथा और दूसरी, अमर कथा तो सबको मालूम है, सत्यनारायण की कथा भी मालूम है सबको। तो बाबा आके क्या कर रहा है? बाबा हमको आके सत्यनारायण की, मना संगम युग में आप सत्य बनेंगे तब जाके सत्युग में नारायण या नरस, नारायण ना नारी लक्ष्मी बनेंगे अमरनाथ। और तीसरी कथा कौन सा है? तीसरी की कथा पता है आपको? नहीं पता है? ये तीसरी की कथा है ना, बहुत लोगों को पता है, मेरे को भी नहीं पता था, लेकिन आज पता चला मेरे को। वो तीसरी की कथा जो है ना, वो सिंधी लोग माना, हिंदी लोग मनाते हैं उसको, एक व्रत है, एक उपवास करते हैं उसमें। खास करके एक था एक सौकार लक्ष्मीचंद, उसके दो बच्चे थे, एक बेटी थी। बेटी को शादी करके उसने दे दिया था, तो उसने एक फेस्टिवल मनाना था, उसको उत्साह मनाना था, तो इसीलिए बेटी को बुलाने के लिए दो बच्चों को भेजा उसने, लेके आओ। तब जब वो गए तो जो बेटी थी ना वो तीजरी की कथा की उपवास कर रही थी। वो तीजरी माने एक माता है, तीजरी माता बोल के वो लोग उपवास करते हो, तो वो उपवास कर रही थी। उसने बोला कि जब तक चांद उगेगा नहीं तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी, जो मेरे साथ रहेंगे वो भी ऐसा ही करना पड़ेगा। तो उन लोगों ने बोला, दोनों भाइयों ने, ठीक है हम भी करेंगे। तो यात्रा शुरू किया उन्होंने। जैसे जैसे यात्रा शुरू किया, एक भाई को रहने गया, थोड़ी देर होगा, एक घंटा दो घंटा चार घंटा, तो भूख लगने लगी। तो थोड़ा बहुत उसने बोला, मेरे को कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं तो खा लूंगा थोड़ा बहुत, आप कर लेना। तो जो दूसरा भाई था ना, बस अभी चांद आने ही वाला था, तो उन्होंने कहा कि अरे थोड़ी देर की तो बात है, 10 मिनट की तो बात है, आधा घंटे की तो बात है, थोड़ा बहुत खा लेंगे हम दोनों, उसमें क्या, इतना दिन तो सारा दिन तो उपवास किया हमने, थोड़ा सा कर लेने से क्या हो जाएगा। तो उन्होंने उपवास तोड़ दिया और खा लिया। जैसे खाया, उसमें कथा में सुनाते हैं कि उसका जो हस्बैंड था ना वो पैरालाइज हो गया। वो उसने क्या किया, उपवास तोड़ दिया, तोड़ने के कारण वो पैरालाइज हो गया। तो उसको पता चला, मेरे इसके उपवास के कारण मैंने तोड़ दिया, इसके कारण ही उसको ऐसा हुआ। फिर दोबारा उसने उपवास किया और ठीक हुआ। ये सब मना बाबा किस लिए कहते हैं तीसरी की कथा, कि बाबा हमको कौन सा उपवास सिखा रहा है? हाँ, बाबा हमको कई नियम मर्यादाएं, कई चीजें हैं ना हमारे ब्राह्मण जीवन में, कि इसको तोड़ो नहीं, आप अंत तक संगम युग का अंत तक उसको पालन करो, क्योंकि तभी हम सत्युग में श्रेष्ठ मनुष्य से देवता बनते जा रहे हो ना। तो ये कहानी ही मनुष्यों ने बनाया है, लेकिन बाबा इसको क्यों एग्जाम्पल देता है? ये सब हम ब्राह्मण आत्माओं ने जो प्रैक्टिकल में जो किया है उन्होंने स्थूल रूप में उन्होंने बता दिया उन्होंने। तो इसलिए बाबा हमेशा कहता है कि ये तीन मुख्य कथा है। और इसमें भी बाबा क्यों बोलता है बाबा ये कथा, क्योंकि सुनाने वाला कौन है? मनुष्य, गुरु, गोसाई लोग जो भी है, लेकिन यहां सुनाने वाला कौन है? तो कौन है वो? परमात्मा निराकार है। और निराकार कैसा सुनाएगा? साकार में आके, ब्रह्मा अवतन में। तो वहां लौकिक लोग क्या कहते हैं? निराकार परमात्मा क्या है? नाम रूप से न्यारा है। उन्होंने क्या कहते हैं कि परमात्मा तो नाम रूप से न्यारा है, वो कैसा आ सकता है? वो उसका नाम नहीं है, रूप नहीं है, वो आके कैसा सुनाएगा आपको कथा? तो बाबा कहता है कि मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूं, मैं ब्रह्मा के तन में आके आप लोगों को मुरली सुनाता हूं। क्या बनाता हूं? आत्मा को मनुष्य से देवता बनाता हूं। तो इसीलिए बाबा कहता है तुम्हारी बुद्धि, जो तुम्हारी जो बुद्धि की जो इतना प्योर कौन बनाया? क्यों कौन बनाया? जब शिव बाबा आया तभी तो तुम्हारी बुद्धि प्योर बनी ना, तो परमात्मा जब आया तभी। तो इसलिए बाबा कहता है कि तुम्हारे सामने बाबा खुद आके पढ़ा रहा है, क्योंकि वहां कौन पढ़ा रहा था? मनुष्य। वो मनुष्य जो गुरु गोसाई लोग हैं, जो कथा सुनाने वाले सुनाते, लेकिन यहां कौन सुना रहा है? हाँ, ये सदा याद रखना, जब भी मुरली क्लास में आते हो तो कौन सुना रहा है? शिव बाबा सुना रहा है हमको। तो बाबा कहता है कि हमेशा बुद्धि में रखे, निराकार बाप हमको पढ़ाता है। और ये भी बाबा ने कहा कि वो नाम रूप से न्यारा नहीं है, वो भले वो निराकार है, निराकार होते हुए भी बाबा पढ़ाने आते हैं। किसके द्वारा? तो बाबा ने और अच्छी बात ये कही कि तुम यहां बैठे हो, तुम्हारे में भी कोई कच्चे हैं? क्यों? हाँ, क्यों कच्चे हैं, क्यों पक्के हैं? क्योंकि बाबा ने कहा कि आधा कल्प से हाँ, क्योंकि आधा कल्प का जो देहाभिमान है, आधा कल्प का जो संस्कार है, कभी कच्चे बन जाते हैं कभी। इसीलिए कभी भी हमारे संस्कार, जो आधे कल्प के संस्कार है, जो देहाभिमान के संस्कार है, जो मनुष्यों के संस्कार है, वो हमारे पर हावी होने नहीं देना। याद रखना एक चीज। तो इसलिए बाबा कहता है कि कच्चे पक्के बाबा के बच्चे भी है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि आपको सच्चे बच्चे बनना हो तो क्या करना पड़ेगा, आत्मा अभिमानी बनना पड़ेगा। और बाबा ने कहा कि मनुष्य देहाभिमान रहते हैं, मनुष्य क्या करते हैं, देहाभिमान में रहते हैं, इसीलिए देहाभिमान को, वो देह को भूलते ही नहीं, उनको भूलना आता ही नहीं है उनको। और घड़ी घड़ी क्या कहते हो, बाबा ने क्या कहा आजकल, मनुष्य देहाभिमान में रहते हैं इसलिए वो घड़ी घड़ी, हाँ, बुद्धि इधर उधर जाता है, मनुष्यों के प्रति जाता है, मनुष्यों की मतलब देह की तरफ ही उनका बुद्धि जाता है। लेकिन आप आत्माएं, बाबा ने आके आपको आत्माभिमानी बनाया। और बाबा कहता है कि बाकी सिर्फ गीता पढ़ने से, हाँ, सिर्फ गीता पढ़ने से राज्य भाग मिलता नहीं है। क्यों क्यों सिर्फ गीता पढ़ने से राज्य भाग नहीं मिलता है? हाँ जी, बाबा ने बोला कि स्थूल वो जो जो लौकिक वालों ने जो बनाया, उस गीता से आपको राज्य भाग मिलने वाला है। कब मिलेगा? जब शिव बाबा आके आप आत्माभिमानी बन के शिव बाबा को दिल से याद करेंगे तभी राज्य भाग बनेगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं पहले पहले शिव को मानते थे। जब द्वापर युग में किसको पूजा किया हमने? शिव बाबा को पूजा किया ना, इसलिए कहते हैं कि एक दो उपासन, एक का उपासन करते आए हम, किसी दूसरा देवी देवताओं को किसी को भी पूजा नहीं किया, सिर्फ शिव बाबा को पूजा किया हमने। हाँ, तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि वो जो भक्ति में भी तमो प्रधानता आती गई, तो तमो प्रधानता आती आते आते क्या था, पर बाद में उन्होंने देवताओं को पूजा शुरू किया, बाद में प्रकृति को पूजा किया, बाद में मनुष्यों को पूजा शुरू किया, तो अधोगति में गए। तो फिर से बाबा आके सदगति, फिर से कौन सा धर्म स्थापन करने के लिए बाबा आया है? हाँ, बाबा ने कहा फिर से मैं देवी देवता धर्म स्थापन करने आया हूं। उससे पहले इस संगम युग में कौन से धर्म के हैं हम? ब्राह्मण धर्म के हैं। अभी तुम्हारी चढ़ती कला है, कहते हैं बाबा ने कहा ना स्टार्टिंग में मीठे बच्चे, हा? हाँ, तो बाबा ने एक और एक बात कही कि याद की यात्रा में रहकर अपने को पवित्र बनाते हो। जितना जितना याद की यात्रा में, देखो आप 3 दिन यहां बाबा को याद कर रहे हो, कैसा महसूस तो हो रही है, हा? अच्छा लग रहा है ना? सिर्फ अच्छा ही नहीं, जैसा लग रहा है कि आत्मा बहुत हल्की हो गई है, हा? शुद्ध हो गई है, लगता है ना, हा? तो इसलिए बाबा देखो आज कहता है कि जितना जितना याद की यात्रा में रहेंगे उतना पवित्र बनते जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि एकदम क्या हो गए थे हम लोग, गिर गए थे, तो फिर से बाबा आके हमको उठा रहा है हमको। तो बाबा कैसा आता है देखो, कितना सिंपल सिंपल बाबा हमको समझाता है। जैसे आत्मा प्रवेश करती है, हा? कितनी छोटी छोटी बात है, हम दूसरों को समझाने जाते हैं तो उनकी बुद्धि में घुसता ही भी नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं जैसे आत्मा आकर शरीर में प्रवेश करती है, पता थोड़ी पता है, आत्मा प्रवेश करिए तो पता चलेगा क्या? नहीं पता चलेगा। अभी तुम भी जानते हो कि बाबा कैसे प्रवेश कर बोलते हैं, इसमें कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई साक्षात्कार नहीं हुआ है। कई लोग पूछते हैं भगवान पढ़ाते हैं आपको, वो करते हैं, ये करते हैं, स्वर्ग में जाते हो, वहां जाते हो, या हमको कुछ अनुभव नहीं होता है, हमको कोई साक्षात्कार नहीं होता, हमको कोई जादू नहीं होता है। लेकिन बाबा क्या कहता है, हाँ, यहां जादू टोना की बात नहीं है, यहां क्या है, प्रैक्टिकल समझने की बात है, ज्ञान की बात है। बाबा एग्जाम्पल दे रहा है कैसा मैं आता हूं, कैसा पढ़ाता हूं आप लोगों को। तो बाबा कहते हैं सारा ड्रामा में नूंद है। तो दूसरी बात बाबा ये कहता है कि बाप कहते हैं कि मैं ब्रह्मा के द्वारा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म का स्थापना करता हूं, यही करेगा। कहां पर करेगा? यहीं पर ही करेगा बाबा, वहां पर नहीं करेगा, यहीं पर ही करेगा। तो इसीलिए सूक्ष्म वतन में तो नहीं करेंगे ना बाबा ने। देखो एग्जांपल क्यों, आज की मुरली बड़ी सिंपल थी लेकिन एग्जांपल इतने अच्छे अच्छे, क्योंकि स्थापना करना हो तो कौन चाहिए? ब्रह्मा चाहिए। पालना करना हो तो कौन चाहिए? विष्णु चाहिए। उन्होंने क्या कर दिया फिर? ब्रह्मा को कहां दिखाया, विष्णु को कहां दिखाया? सूक्ष्म वतन में। तो बाबा कहता है मैं सूक्ष्म वतन में तो नहीं करूंगा, मैं तो यहीं आके संगम युग में आके मैं देवी देवताओं को रचना करता हूं। और बाबा ने यह भी एक बात बताई कि जो शास्त्रों में जो उसमें बताया गया कि विष्णु को क्या दिखाते हैं, कमल चक्र गदा ये सब, तो ये सब कहां की है? ब्राह्मण आत्माओं की एक कहां निशानियां है ये सब। तो इसीलिए बाबा हम लोगों को, और बाबा आके हम लोगों को ज्ञान का सागर है ना बाबा, तो ज्ञान का सागर आके हमको क्या बना रहा है? हाँ, मास्टर सागर बना रहा है। किसको बना रहा है खास करके? हाँ, आज के मुरली के अनुसार क्या था बाबा? खास मास्टर सागर माताओं को बनाने आया है, बहनों को बनाने आया है। इसलिए क्या कहते हैं, नदियां कहते हैं ना, तो आप माताएं नदियां हैं और गोप क्या है? हाँ, यस। तो फरमान क्या है बाबा का? हाँ, आज के मुरली के अनुसार फरमान क्या है? आज का फरमान है देहदारियों को पक्का। तो वास्तव में तुमको बधाई हो, क्योंकि मनुष्य से देवता बनते जा रहे हो। बाप तुमको बधाई देते हैं कि रावण के जंजीरों से बाबा ने जो प्रश्न किया था वो सब। और देखो सबसे मेन इम्पोर्टेंट बाबा ने कहा कि पास विद आरण होने के लिए बाप को याद करना है, किसी भी देहदारी को याद नहीं करना है। आंखों से जो दीदी ने कहा ना, आंखों से जो दिखाई देता है उसको नहीं देखना है, जो नहीं दिखाई देता है पॉसिबल? हाँ, पीछे वाले पॉसिबल है? हाँ, जो नहीं दिखाई देता है उसको देखना पॉसिबल है? पक्का करना ही है, क्योंकि उस नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो संगम युग में हमेशा, क्योंकि हमारी बड़ी दादी कहती है कि उमंग उत्साह कभी कम होने मत देना, बाबा की याद की उमंग उत्साह, कुछ भी हो जाए बाबा की याद की उमंग उत्साह कभी कम होने मत देना। तो बाबा कहता है कि ये अमर लोक की यात्रा है, इस यात्रा को मृत्यु लोक से हमको कहां जाना है? आपको अमर लोक जाना है। और बाबा ने कहा कि कोई भी विकर्म, सपोज संकल्प में आ गए लेकिन उसको कर्मों में नहीं लाना है। आज का वरदान था अतीन्द्रिय सुखमय स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं को आह्वान करने वाले विश्व कल्याणकारी बाबा। कैसे आह्वान करेंगे? हाँ, बाबा ने कहा जितना जितना आप कर्मातीत अवस्था को पाते जाएंगे, शांति की स्थिति में रहेंगे, जितना जितना आपकी स्टेज ऊंची रहेगी, तो आपको बुलाने की जरूरत नहीं, आपको आत्माओं को याद करने की जरूरत नहीं है। आपको बीज कहाँ है? नीचे है ना। बीज कौन है? शिव बाबा है। बीज को पानी डालिए, बीज को याद करिए, बीज को संकल्प डालिए, तो ऑटोमेटिकली। तो हमारी बड़ी दादी कहती थी कि किसी, हम कभी कई बार हम प्रश्न पूछते थे दादी को और दादी जानकी को भी, कि दादी कई बार हम कि दूसरों को सकास देंगे, बोला दादी ने कहा कि बड़ी दादी ने नहीं, जरूरत नहीं किसी को, आपको इमर्ज करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आप बाबा को कहो, बाबा उस आत्मा को मतलब बाबा के थ्रू जाओ, बाबा से करो, आप डायरेक्ट नहीं करो, तो वहां क्या होता है, अटैचमेंट हो जाता है, वहां थोड़ा सा कमी आ जाती है हमारी शक्ति में, हमारी देने की जो हमारा जो देह होता है ना, हमारा जो व्यक्तित्व होता है वो कम आ जाता है। तो इसलिए बाबा दादी ने कहा कि डायरेक्ट बाबा को याद करो, बाबा से आपका संबंध जोड़ो, जो भी है बाबा को बोलो। और आज का स्लोगन क्या था? हाँ, हर एक की विशेषता को स्मृति में रखो, फेथफुल बनो तो संगठन में एक मत होगा। कभी भी दूसरों की कमजोरियों को दूसरों को मत बनाओ। आपको पता चल गया तो आपके अंदर रख लो उसको, विशेषता को सुनाओ। भले उसके अंदर कुछ भी हो सकता है लेकिन विशेषता भी होगा ना, क्योंकि बाबा ने उसको पहचाना है, बाबा या उसने बाबा को पहचाना है, तो कुछ तो विशेषता होगी। तो उस विशेषता को समझाओ, उस विशेषता को वर्णन करो, तो संगठन में बल रहेगा, एकता रहेगी। अच्छा, आज का क्या था मेन? बाबा को याद करो, देहदारियों को नहीं याद करो। आप चढ़ेंगे तो सबका भला हो जाएगा। ओम शांति।